Om Shivaya Nama. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dashashloki, presented by Swami Sri Vishnu Vallabhanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Abu Kailaswale Maharaji Ave, to Kay Mataji, kya kar rahe ho Bombay mein? Aajao Rishikesh Kailas Ashram. Aur jab Kandiwali wale Maharaji se batave कि कैलाश वाले ने बुलाया तो उन्होंने कहा जो कैलाश में करने जा रहे हो तुम यही कर रहे हो तो तुम्हें वहां जाने की जरूरत क्या है. करते करते वो नहीं गई और यही जीवन निकाल दिया. आप किस स्थान में हो कहां हो ये महत्वपूर्ण नहीं है. जहां हो वहीं पर आप वो काम करो तो कहीं इधर उधर आने जाने की जरूरत नहीं है. जब इतना अभ्यास होगा वही व्यक्ति हरिद्वार जाएगा तो गंगा जी को देख करके उसका चित्त द्रवित होगा. और यदि बंबई में रह करके भी हमने कुछ नहीं किया है तो हरिद्वार जाकर के भी गंगा जी के पास में वो भाव नहीं बनेगा बल्कि उल्टा होगा. जल्दी चलो बंबई ठीक है यहां कहां आ गए. साधना करने का अभ्यास बना लेने पर कहां पर हो किस स्थान में हो किसके घर में हो जहां है यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधया भी है परमम पदम ऐसा भी है. जहां जहां मन जाता है वही परम पद हो जाता है. मन को ऐसा साध लिया है तो बाहर के वस्तुओं को आलंबित करके जो मन को एकाग्र किया जाता है. हमारे यहां ठीक थोड़े उल्टी पद्धति है. उल्टी करो या सीधी करो क्योंकि अभी तक जो योगा आदि करते हैं ध्यान लगाते हैं सब ये मन को एकाग्र करने की बात तो की जाती है लेकिन एक समस्या है इसमें. जब तक उस वस्तु का आलंबन होगा तब तक तो मन एकाग्र हो सकता है लेकिन जैसे ही कैसेट बंद किया आवाज आना बंद हुआ मन बिखर गया. अब इस हमें बाह्य वस्तुओं के आलंबन बिना अपनी तरफ से अंदर की ओर से इस मन को एकाग्र करना है. इसका सबसे अच्छा समय माना गया ब्राह्म मुहूर्त. साढ़े तीन चार पांच बजे भी चल जाएगा. उठ जाओ सवेरे और बैठ जाओ. बैठने के बाद जो हमारा मन अस्त व्यस्त होता है पहले हमें प्राण की तरफ ध्यान देना है श्वास की तरफ. कुछ भी नहीं करना है किसी वस्तु का आलंबन नहीं है न कोई फोटो है न कोई मंत्र है. अंदर से ही आवाज आती है. अंदर से आवाज देने वाला कौन कौन वही परमात्मा. बाहर के वस्तु के आलंबन लेकर के अंदर के परमात्मा को जानने की कोशिश करना थोड़ा कठिन काम है. जबकि लोगों को बाहर के आलंबन से करने में अच्छा लगता है. जब कोई पूछते ना कोई ध्यान का तरीका बताओ महाराज आप कुछ जानते हो थोड़ा ध्यान कैसे लगाना है बताइए. तो कुछ भी नहीं करना है सहज अवस्था का अभ्यास करना है. शुरू शुरू में जब ये अभ्यास करते हैं ना पहले तो पांच मिनट दस मिनट बैठने का करना चाहिए धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए. जब बैठ जाओ अंदर से जो आवाज आती है सुस्पष्ट आवाज सुनाई नहीं देगी. और उसमें अंदर की आवाज कैसी होती बोले जैसे झरने आदि में पानी की आवाज नहीं आती. समुद्र के किनारे पानी की आवाज नदी के किनारे झरनों में इस तरह के अस्पष्ट सुस्पष्ट तो नहीं अस्पष्ट रूप से आवाज आने पर भी धीरे धीरे जब अत्यंत चित्त एकाग्र हो जाता है तब जो ध्वनि आती है जो आवाज आती है वही है ओम. वो क्या है ओम. ओम का अर्थ कल बता दिया था अव माम अवरक्षणे. अवरक्षणे धातु से ओम शब्द की निष्पत्ति होती है. तो जो भी साधना के मार्ग में चले चाहे वो गृहस्थ हो चाहे सन्यासी हो किसी भी आश्रम का हो ओम के उच्चारण में संशय नहीं करना कि गृहस्थ नहीं कर सकते महात्मा ही कोई भी कर सकता है सबके लिए. और यहां तक कहते हैं जब कोई बात कह रही हो ना उसमें भी ओम ओम बोलते हैं. संस्कृत में हा हा बोलने के लिए आम आम बोला जाता है. क्या बोला जाता है आम आम गुजराती में क्या बोलते हैं? जी जी बोलते हैं। अच्छा, ये तो हिंदी जैसे हो गया, अंग्रेजी में होता है या या या, यस यस को बोलते या। अभी हम पहाड़ में गए थे, कुमायूं की तरफ बोलते होई होई होई, हाँ जी हाँ जी। कई जगह बोलते हजूर हजूर, नेपाल में, सब जगह का अलग अलग हिसाब है। आम आम बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ओम जो बनता है वो फिर बहुत जो व्याख्या की गई है, ओम नमः शिवाय और ओम इत्येतद् अक्षरमिदं तस्य उपव्याख्यानम् मांडूक उपनिषद में, तो वो फिर अलग प्रक्रिया है। लेकिन सामान्यतया जो ओम हमारे अंदर से जो आवाज निकलती है, इसके द्वारा जब मन एकाग्र होने लगता है, अंदर की आवाज जब सुनाई देती है, तो उसकी कैसी स्थिति है? तो कहा एक भौरे की तरह, जैसे भौरा उड़ता रहता है। आप कभी गौर करके देखिए, भौरे को फूल पे बैठेगा, थोड़ी बहुत सुगंधी ली, जो भी रस लिया, और फिर उड़ के दूसरे पे जाएगा, तीसरे पे जाएगा। हम लोगों की भी मनस्थिति का हाल कैसा है? भौरे की तरह ही तो है, इस पे उस पे इस पे ऐसे भागता रहता है। और जिस पुष्प में अत्यधिक रस आने लगता है तो फिर भौरा गूंजना भी बंद कर देता है, और ऐसा बैठ जाएगा उसमें एकाग्र होके। अब उसके बाद कितने भी सुगंधी वाले पुष्प उसके बगल में ले जा, उससे भौरे का ध्यान टूटता नहीं है, ऐसी एकाग्रता आ जाती है। और जितने देर के लिए मन एकाग्र होगा, और उस समय जो अपने स्वरूप का अनुभव होता है, वह तो फिर अनिर्वचनीय है, प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। इसलिए पुष्पदंताचार्य जी भैरव स्तोत्र में लिखते हैं, मन को जो काबू करने का तरीका और उसमें जो अनुभव होता है, वही है मन प्रत्यक्ष चित्त सविधम अवधायात मरुत प्रहृष्य द्रोमाण प्रमद सलिलोत्संगित दृशा यदा लोक्या हलादम हरद इव निमज्जा मृतमय दधत्यंतस्तत्व किमपि यमिनस्तत् किल भवान। यमिनः संयमिनः, संयमन करने वाले, जिन्होंने अपने मन का नियंत्रण कर लिया है, जिनका मन नियंत्रित हो चुका है, मनः प्रत्यक्ष चित्ते, जब वह मन अन्य विषयों को छोड़ करके, मन का काम क्या है? संकल्प करना, विकल्प करना। मन पांच भूतों के सत्वगुण से उत्पन्न हुआ, ये भी आप लोगों ने जाना सुना। मन यदि शांत हो तो ये प्रश्न नहीं उठता कि आज मेरा मन शांत क्यों है, ऐसा कोई बोलता है क्या? यदि मन अशांत हो तो अपने आप में भी प्रश्न उठता है कि मेरा मन आज बेचैन है। मन इंद्रियों के स्वामी है, इंद्रियों के द्वारा एक एक विषयों के जो उपहार मिलता है मन को, इंद्रियां क्या करती है? विषय लाला करके मन को देती है। लेकिन मन ने अब वह रस पिया है, जो विषयों के द्वारा जो रसास्वादन करने का अभ्यास था, वो अब छोड़ने का तरीका अपनाया। क्योंकि साधना करना है, साधना के मार्ग में चलना है, इतने स्वाध्याय सत्संग कर रहे हैं, जिसका मतलब क्या हुआ? रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन। जब मन को हम अपनी तरफ एकाग्र करते हैं, तो योगा के हिसाब से मन के अंदर बाहर के वस्तु लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों के अपनी जो साधना पद्धति है, मन के अंदर जो पहले से विषय का संस्कार पड़ा है, वह भले ही स्मृति में आएगा ध्यान करते समय, उसमें कोई दोष नहीं है। हमें एक चीज की कोशिश करनी है कि बाहर के वस्तुओं को नहीं आने देने की कोशिश करनी है। जो पहले से संस्कार पड़ा है वो यदि उद्भूत होता भी है तो कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन अब जब मन को एकाग्र करने लगे तो बाहर के वस्तुओं को आने से रोकना, जबकि अष्टांग योग में प्रत्याहार आदि की बात की जाती है, यहां पर ऐसा भी नहीं है। इसलिए हमारे पतंजलि योग से वेदांत का जो योग है ना, एकदम अलग है, हट करके। क्योंकि ये जो मन है, एक बहुत छोटी सी पुस्तक है, आप लोगों को कभी दिखाऊंगा, उसमें आता है ओम नमः शिवाय। तो त्यागो ही नमसः वाच्य, नमः शब्द का अर्थ ही होता है त्याग, और नम का उल्टा करो तो क्या बनता है, मन। त्यागो ही नमसः वाच्य, नम का अर्थ होता है न मे इति नमः, मेरा नहीं मेरा नहीं, यही तो नमस्कार है। ये कैसे होगा? कई बार व्यवहार में जो बोलते हैं, एक जगह उदाहरण दिया, असनम में बसनम में जाया में बंधु वर्गो में। असनम में, रास्ते में चल रहे हो, दुकान में कोई खाने की चीज दिख गई और वो हमने पहले से खा रखा है, तो असनम में, ये मेरा आहार है, ऐसा भाव आता है। जबकि वो हम खरीदेंगे खाएंगे तब वो मेरा होगा, लेकिन मेरे ये खाने की चीज है ये कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि पहले से हमने खा रखा है। और जो वस्तु हमने खाई नहीं अथवा जो वस्तु हमारे अनुकूल नहीं है, घास को देख करके कहोगे क्या कि असरम में? वो किसका है फिर? पशु का आहार है। उसके प्रति कभी मन में ये भाव नहीं आता कि असरम में। ऐसे ही बसनम में, आदमी कपड़ा खरीदने जाए, लेडीज के कपड़ा थोड़े देखेगा, वो तो लेडीज का है। हम अपना देखते हैं, जूता चप्पल खरीदने जाते हैं, इसमें भी कितना भेद कर दिया कपड़े आदि में, जूते चप्पल में भी भेद किया। उठे हुए चप्पल लेडीजों के, वो इतने बड़े बड़े एड़ी उठे होते ना, उसमें कहीं पैर फिसल जाए चोट लग जाए कितना कष्ट होता होगा। अब उस लेडीज सैंडल, लेडीज शूज, लेडीज ड्रेस सब अलग अलग है। बसनम में जाया में बंधु वर्गो में, ये मेरी पत्नी है, ये हमारे बंधु है, कुटुंब है, सखा है, मित्र है। मैं इति ब्रुवाणम, जो ऐसा मेरा मेरा बोलता रहता है उसका अंतिम में क्या हाल होगा? काल ब्रिको हंति पुरुषाजम। एक तरफ तो हम बोलते हैं न जायते म्रियते वा कदाचित, इसलिए हम लोगों का एक नाम है अज, और जो अपने को जन्म लेने वाला मानता है तो अज में थोड़ा सा एक प्रत्यय बढ़ा दो, स्त्रीत्व के विवक्षा में अज शब्द से टाप प्रत्यय करके अजा बनता है, और अजा बोलते हैं संस्कृत में बकरी को। बकरी भी दिन रात क्या बोलती है? मैं। अज क्या बन गया? अजा बन गया। इसलिए भागवत में जहां अजामिल शब्द आया है ना, तो उसका अर्थ यही तो किया जाता है। जब तक अजा का भाव था, जब तक पुत्र को पत्नी को परिवार को मेरा मेरा बोलता रहा, तब तक तो वह अजामिल था, अजा से मिला हुआ था। और जब नारायण पुत्र को पुकारा तो फिर अज परमात्मा से मिल गया। अज और अजा में इतना अंतर है। न जायते इति अज, जायते इति ज, और न ज इति अज, ऐसे इसकी व्युत्पत्ति होगी संस्कृत व्याकरण के हिसाब से। क्योंकि जायते इति ज, जो उत्पन्न होता है उसको ज बोलते हैं। पंके जातः पंकज, कीचड़ में उत्पन्न होता है, इसलिए कमल पुष्प का नाम पड़ा पंकज। रूढ़ी अर्थ के हिसाब से भी पंकज मतलब कमल, और व्युत्पत्ति के हिसाब से कीड़े मकोड़े भी हो जाएंगे पंकज, क्योंकि कीचड़ में जो भी पैदा होगा उसका नाम क्या होगा? पंकज। तो जायते इति जह, हम सब के सब क्या है, ये पांच भूत जो है उत्पन्न हुए हैं, इसलिए जाए। लेकिन इसको जिसने ग्रहण किया, इसमें जो बैठा है वह आत्मा, वो कैसा है? अज न जायते म्रियते वा कदाचित, जन्म नहीं लेता इसलिए मरता भी नहीं, और जो जन्म लेता है जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो जात है जन्म लेता है उसका निश्चित है मरना, और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो मरता है उसको जन्म भी लेना पड़ता है। अब हम लोगों को क्या करना है? अभी जो हम जी रहे हैं किसके लिए जी रहे हैं? मरने के लिए जी रहे हैं कि अमर होने के लिए जी रहे? अभी बता रहे थे ना, बोले महाराज आप दश श्लोक की तो सुनाते हैं, साथ में व्यवहार की भी बहुत बातें आती है, अच्छा है यही सच्चाई है। जीना तो सबका दिख रहा है, सब जी भी रहे हैं, लेकिन किसके लिए? बोले 100 साल की प्रतीक्षा कर रहे हो, 100 साल के बाद उनको मालूम है कि कोई बचा नहीं पाएगा, जाना पड़ेगा। और हम लोग जो यहां आते सवेरे सवेरे बैठ के किसकी तैयारी कर रहे हैं? मरने के नहीं, अमर होने के लिए। ये अमर होने की तैयारी है, क्योंकि जन्म लेने के बाद मरना तो अवश्यम भावी है, निश्चित है, इससे तो हम बच नहीं सकते। अब एक ही प्रयास करना है कि अजातम नैव गृहणाति कुरु यत्नम अजन्मनि। अजात जो है उसके ऊपर काल का प्रभाव नहीं चलता, इसलिए ऐसा यत्न करो जो दोबारा जन्म न लेना पड़े। जन्म हो चुका है, जो बाण चल चुका है वो तो अवश्य लगेगा ही, लेकिन जो दूसरे तर्कस में बाण है उसको हमें नहीं चलाना है, जहां है वहीं पर। भस्मसात कुरुते तथा भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि, सब समाप्त हो जाए इसके लिए अभ्यास करना है। तो कहा जो अभी तक बोलते अशनम में वसनम में जाया में बंधु वर्गो में इति बुर्वाणम, ऐसा जो मेरा मेरा बोलने वाला है, काल ब्रिको, ब्रिक बोलते भेड़िए को, जैसे भीम का नाम है ना ब्रिकोदर, तो भेड़िया का जो पेट होता है बड़ा छोटा और गोल दिखता है, किसी का ऐसा पेट हो बुरा ना माने, बोले जिसका पेट गोल हो और छोटा दिखे ना वो खाते बहुत हैं और उसका हजम भी होता है, ऐसा है भीम जो है ना, ब्रिकोदर विशेषण दिया गीता में, ब्रिकोदर। तो ये ब्रिक कौन है? भेड़िया, काल रूपी भेड़िया का शिकार कौन बनेगा? अजा, जो अपने को बकरी की तरह मेरा मेरा बोलता रहता है, उसको तो भेड़िया रूपी काल मार के खा जाएगा। और जो इससे उल्टा चलेगा, कुछ भी नहीं है मेरा, जो कुछ भी है, ज्ञान होने के बाद इतनी तो भाषा बदलनी है। जहां अभी जैसे अभी बताया, गंगा जी में नहाने वाला व्यक्ति एक तो नहा रहा है केवल शीतलता मिले, स्नान करना इतने भाव से, और एक को पता है कि गंगा जी कौन है, व्यापक गंगा, व्यापिनी ज्ञान गंगा, ऐसा आता है। आचार्य शंकर काशी पंचक में ऐसा लिखते हैं कि काशी क्षेत्रम शरीरम त्रिभुवन जननी व्यापिनी ज्ञान गंगा। गंगा जी ज्ञान के प्रतीक हैं, इसलिए उत्तराखंड के चारों धाम की यात्रा करो ना, सबसे पहले जाते हैं यमुनोत्री भक्ति, फिर जाते हैं गंगोत्री ज्ञान, और उसके बाद जाते फिर केदार वैराग्य, भगवान शंकर का स्थान है, और अंतिम में बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में भगवान क्या करते हैं? ज्ञान प्रदान करने वाले शंकर जी, और मोक्ष प्रदान करते हैं विष्णु जी, और विष्णु जी जिसको मोक्ष देना चाहते हैं उसके ऊपर कृपा करके क्या करते भगवान? अनुग्रहणाम मेहम ये शाम हरिष्ये तद धनम शनि। जिसके ऊपर मेरा अनुग्रह होता है उसके पास जो जो माल मत्ता है ना वो पहले छीन लेता हूं। इसलिए भगवान विष्णु की आराधना करने में लोग डरते हैं कि विष्णु जी की पत्नी है लक्ष्मी, वो अपनी पत्नी को दूसरे को क्यों देंगे? तो बोले जो भी तेरे पास है वो भी अवैध है, सब इधर लाओ। वो ले लेते हैं, तो भगवान विष्णु मोक्ष प्रदान करे और धन संपत्ति बनी रहे इसके लिए नर्मदेश्वर के साथ शालिग्राम की पूजा करे। शालिग्राम की पूजा करो तो नर्मदेश्वर को भी साथ में रखो। कदाचित भगवान विष्णु छीनना भी चाहे और शंकर जी को मनाते रहोगे तो शिव जी थोड़े विष्णु को रोकते हैं, थोड़े बेचारे को आनंद लेने दो, क्यों छीन रहे हो? वो अभी मुक्ति नहीं चाह रहा, वो तो केवल आनंद लेने के लिए कर रहा है आराधना। आज वो सर्वथा ही चाहेगा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तो फिर विष्णु की आराधना करो और सब छीन लेते हैं। आज जिनको केवल संपत्ति चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, वो केवल शंकर जी की पूजा करे। भोले बाबा बहुत कुछ देते हैं, ये सब हमारे शास्त्रों की बातें हैं। तो मे इति ब्रुवाणम काल ब्रिको हंती पुरुषाजम, काल रूप जो ब्रिक है, भेड़िया है, उस अजाक के जो है हनन कर देते हैं, उसको मार डालते हैं। और ये न मे इति नम, और नम का उल्टा करो तो मन को देवो या मन साक्षी, कौन देव है? बोले जो मन का भी साक्षी है। मन को ही हम चित्त भी बोलते हैं, और चित्त इसलिए नाम पड़ता है, चित्त और चित्त दोनों में थोड़ा सा अंतर है। कैसे बनता है चित्त? तो चित्त मतलब चेतन, परमात्मा। यदि मन पूरा चेतन में व्याप्त हो जाए तो फिर मन का नाम मन नहीं रह जाता है, वो चेतन स्वरूप ही होता है। मन की अपनी कोई सत्ता तो है नहीं, जड़ है वो तो। लेकिन जब तक मन को उस चित्त से अलग करके देखते हैं तब उसी का नाम पड़ता है चित्त। तकारो विषयाध्यासु, एक तकार है केवल चित्त तो वो हो गया चेतन, और जब डबल तकार होगा तो उसका नाम पड़ेगा चित्त। ये अंतर है। अब हम लोगों का अपने मन को क्या बनाना है? ओमकार के द्वारा एकाग्र हो जाने पर अब इस मन में केवल क्या होना चाहिए? परमात्मा के स्वरूप का चिंतन जब होता है तो अभी तक व्यक्ति भेद, वस्तु भेद बना हुआ था। जब उस मन में हमने अभेद परमात्मा को जाना तो ऐसी कोई जगह नहीं, कोई वस्तु नहीं जिसमें परमात्मा का दर्शन न हो। इतनी सी बात है, ज्ञानी और अज्ञानी की अवस्था में ज्ञानी सर्वत्र वासुदेव सर्वमिति संपूर्णम जगदेव नंदन वनम सर्वेपि कल्पद्रुमा, पूरा संसार उसको नंदन वन के रूप में दिखाई देता है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें परमात्मा की सत्ता ना हो। लेकिन अभी तक आणविक बिजली, कचरे से भी बिजली बनती है, अलग अलग सोलर पावर, सूर्य के द्वारा भी हमें वो पावर मिल जाते हैं। बिजली के उत्पत्ति, बिजली बनने का तरीका भिन्न भिन्न होने पर भी उसके जो उपयोग करने का तरीका है उसमें भी भिन्नता है। लेकिन सामान्य से सामान्य आदमी भी उस बिजली के द्वारा लट्टू पंखा तो चला ही लेता है, उसका भी काम चलता है। जो बिजली बनाने वाले हैं, जो वहां काम करने में लगे हैं, वो भी उसका भी अपना जितना प्रयोजन है उतना तो कर ही लेता है। लेकिन जो बना रहा है उसको पता है कि जितने भी ये बिजली बन रही, बिजली नाम की चीज तो एक ही है, उसके प्रयोग करने का भेद है, साधनों में भेद है। ऐसे वह परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन औपाधिक भेदों को देखते हुए, एक बड़ी अच्छी बात है, मजाक की बात है, लेकिन मुझे लगा ये ठीक ही दृष्टांत है। बोले चाय बनाने वाला प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर चाय वाला बन जाए तो कितनी बुरी बात होगी। हाँ, समझ गए? चाय बनाने वाला प्राइम मिनिस्टर बने तो अच्छी बात है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर चाय वाला बने तो ठीक नहीं। एकता में अनेकता को देखना तो सबका अभ्यास है। वेदांत पढ़ने के बाद क्या सीखा हमने? अनेकता में एकता को देखना। ये तरीका यदि आ गया तो जहां पर भी मन जाएगा वहीं पर वो टिकेगा, वहीं पर आप एकत्व का दर्शन करोगे। मनसश्चेन्द्रियाणां च हि ऐकाग्र्यं परमं तप, मन और इंद्रियों की जो एकाग्रता है, एकाग्र का मतलब ही होता है एक ही है आगे जिसके। एक कौन है? तो परमात्मा। और हमारा लक्ष्य हो गया मनसश्च इंद्रियाणाम च ही एकाग्र्यम परमम तप, यही सबसे बड़ा तप है, ज्ञान है, और ये सबको प्राप्त हो गया। हो गया प्राप्त? चलो भाई आज संडे है, आगे भी पाठ पाठ करना है, बात तो बहुत कुछ कहनी है। अभी यहां पर एक एक चीज जो जो हमारे मन में भाव उठते हैं, शरीर के द्वारा जो क्रियाकलाप होता है, जो हम व्रत करते हैं, बीमार पड़ते हैं, स्वस्थ रहते हैं, अस्वस्थ होते हैं, इन सब को परमात्मा में कैसे एक करना है, इसका क्या तरीका है, ये सब भी आगे प्रसंग आने वाला है। और ये सब अध्यास निवृत्ति पूर्वक ही होता है। जब तक हम अध्यास में बने रहते हैं तब तक उस आत्मा से अलग होने के कारण हम दुखी होते हैं, और जब अध्यास निवृत्ति हो गई, शरीर का अपना धर्म चलता रहेगा, मन का अपना व्यापार चलेगा, बुद्धि का अपना व्यापार चलेगा, लेकिन उसमें हमने परमात्मा से एक करके जब देखना शुरू कर दिया तो हमारे सारे दुख निवृत्त हो जाते हैं। और जब तक उससे अलग करके हम रहते हैं तब तक बार बार दुखों का सामना करना पड़ता है। सत्संग इसलिए हम लोग करते ही है कि जो दुख है उसमें भी सुख का अनुभव होने लग जाए। सुख और दुख नाम की कोई चीज है अलग अलग, ऐसा भेदभाव मिट जाए तभी तो ज्ञान की अंतिम पराकाष्ठा मानी जाएगी। इसका फिर विचार करते हैं कल। हरिओम।